राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर इस्कान द्वारका दिल्ली में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के सातवें स्कंद अध्याय के अंतर्गत चौदहवें श्लोक के ऊपर आज श्रवण वर्णन और सत्संग होगा। इस अध्याय का नाम है, सीरस है, महात्मा विदुर की जिज्ञासा। तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का दो भक्तों का मिलन, दो प्रकार की सृष्टि, दो भगवान के अवतार, ये तीसरे स्कंद में सारांश है। दो भक्तों का मिलन है, महात्मा विदुर और उद्धव का मिलन जमुना जी के तट पे, और दोनों के बीच में केवल कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का कीर्तन होता है। दो प्रकार की सृष्टि है, देवी सृष्टि और असुरी सृष्टि। असुरी सृष्टि के अंतर्गत हिरणाकश और हिरणाकशिपु दिति के यहाँ काम की प्रबलता के कारण संध्या काल का उल्लंघन करना, आज तो शिवरात्रि है, और शंकर जी की अवहेलना करना, उसके कारण असुरी प्रकृति के हिरणाकश और हिरणाकशिपु का प्रकट हुआ, जगत जन्म हुआ। और देवी प्रकृति के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा पहली बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और उन दोनों के द्वारा देवहूति का संतान कपिल देव भगवान के अवतार के रूप में, और उतानपाद प्रियव्रत, ये सब देवी संपदा से संपन्न सृष्टि है। और दो भगवान के अवतार इस स्कंद में हमको दर्शन होगा, एक क्रिया प्रदान अवतार वाराहदेव का जो पृथ्वी को लाएंगे तब सृष्टि होगी, गर्भ सागर से लाके अपने स्थान पे स्थापित करते हैं, और दूसरा भगवान का ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव है। तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। भगवान तो है दिव्य, तीनों गुणों से परे, सृष्टि है तीनों गुणों के अंतर्गत, तो भगवान सृष्टि करेंगे तो तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा क्या? और अगर कहें कि ये भगवान की लीला है और खेल है सृष्टि, तो लीला और खेल के बीच बच्चे अगर खेलते हैं तो इच्छा होती है तब खेलते हैं ना, भगवान तो आपत काम है तो उनको इच्छा कहां से आई? और फिर वो जीव जो है ये भगवान का अंश है, पवित्र है, तो फिर ये माया में कैसे फंस जाता है? जब भगवान का अंश जीव है तो माया में कैसे फंस जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय जी कहते, स्वप्न में सोए हुए का गर्दन कटा हुआ हो तो जागने के ऊपर गर्दन कटा हुआ तो नहीं दिखता है। पानी के अंदर चंद्रमा का उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ता हो तो चंद्रमा टेढ़ा दिखता है, चंद्रमा टेढ़ा तो नहीं है। चंद्रमा हिलता हुआ दिखता है, चंद्रमा हिलता तो नहीं है, वो तो प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसे जीव आत्मा जब इस शरीर के अंदर आता है तो ऐसे दिखता है कि इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे चंद्रमा का टेढ़ा मेढ़ा दिखता है या स्वप्न के अंदर गर्दन कटा हुआ दिखता है, लेकिन असल में नहीं होता है। ये तो कारण बताया, लेकिन कारण बताने के बाद अगर चिकित्सा न बताई जाए, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बीमारी बताए, इलाज नहीं बताए तो कोई फायदा है क्या डॉक्टर का? तो जीव ऐसे माया में भ्रमित मुक्त कैसे हो ये भी तो बताना चाहिए ना। तो आज के श्लोक में मैत्रेय ऋषि जीव को जो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होके माया से मोहित हो ग्रस्त होकर बंध गया है उसके मुक्ति का साधन बता रहा है। तो आज का श्लोक बद्ध जीव के मुक्ति का कारण है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। अशेष संकलेश समं विदधते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेह
किं वा पुनस्त चरणारविन्द प्राग सेवा रतिरात्म लब्धा अशेष संकलेश समं विधते गुणान वाद शरवणं मुरारेह किं वा पुनस्त चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्म लब्धा अशेष संकलेश समं विदधे गुणानुवाद शरवणं मुरारेह किं वा पुनत चरणारविन्दं प्राग सेवा रतिरात्म लब्ध्वा अशेष संकलेश समं विदधते
गुणानुवाद श्रवणं मुरारे
गुणानुवाद श्रवणं मुरारे
किं वा पुनस्त चरणारविन्द
किं वा
चरणारविन्द
राग सेवा चरणात्म लब्ध्वा
अशेष
संकलेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे वा पुनस्त चरणारविन्द प्राग सेवा रतिरात्म लब्धा शेष संकलेश समं विदत्ते गुणानुवाद शरवणं मुरारे किं वा पुनस्त चरणारविन्द प्राग सेवा आत्म लब्धा माताजी अशेष संकलेश किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द राग सेवा
अशेष का अर्थ सब पता शेष नहीं रहे का मतलब पूरा शेष का मतलब कुछ बच जाए और अशेष का मतलब कुछ नहीं बचे पूरे का पूरा ठीक है ना बलराम जी को शेष कहते हैं ना शेष का मतलब है जो काम भगवान नहीं करें बाकी बचे हुए शेष काम वो करते हैं जो भगवान नहीं करते हैं काम जैसे नाक काटना है सुर पखंगा ये भगवान नहीं करते तो ये शेष काम सारे वो करते हैं और अशेष कोई शेष नहीं बचे और संग कलेश कलेश का अर्थ तो सबको आता है ना क्योंकि सबको है सबको कलेश है कि नहीं और संग कलेश का मतलब सम्यक कलेश अच्छी तरह से दुख और प्रभुपाद जी कहते हैं लोग दुख को ही सुख मान के खुश हो रहे हैं। सुबह गाड़ी घर से निकलते हैं, दो घंटे गाड़ी में लटके हुए जाते हैं, समझते हैं हम बहुत खुश हैं। इतनी परेशानी कितनी है, दो घंटे रोज गाड़ी में, दिल्ली का तो सफर में आपको तो परेशानी होती है कि नहीं, रोज दो घंटे ट्रैफिक में जाते, फिर थोड़ा बहुत कमाते, वापस नोट गुनते, दुख चला जाता, हम खुश हैं। तो ये कलेश संकलेश, समम, समम का मतलब क्या है, सम दम, सम का मतलब समाप्त, सारे कलेश पूर्ण रूप से कलेश, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। कैसे, विदधते, विदधते का मतलब विधि पूर्वक, जैसे विधाता कहते हैं, जैसे ऐसे विधि, विदधते विधि से किया जाए, क्या किया जाए, गुणानुवाद, गुणानुवाद मतलब भगवान के गुण रूप नाम लीला का गुणगान किया जाए, किया जाए का मतलब कीर्तन हो गया, गुणानुवाद का मतलब है कीर्तन। भाई आप भगवान का गुण गुणानुवाद कैसे करेंगे, भगवान के गुणों का अनुवाद करके बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, तो कीर्तन हो गया। तो बोला कीर्तन करेंगे तो फिर कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ना, तो श्रवणम, इसका मतलब है साधु से, प्रमाणिक गुरु से, भगवान के प्रतिनिधि से, भगवान की गुण रूप नाम लीला सुनने से, क्यों, सुनाने वाला तो कोई होगा ना। और अनु का मतलब, अनु भी है, अनु का मतलब है उसका अनुगामी बनना, तो कोई पहले महात्मा होगा उससे सुने। बोला सुने उससे किसके बारे में, किसके विषय में सुने, मुरारे, मुरारी के विषय में सुने, तो सीधा कृष्ण का नाम है मुरारी और किसी का नाम नहीं है। मूर राक्षस को मारने वाले, ये कहां मारा था मूर राक्षस को, आप थे वहां, हाँ बताओ मूर राक्षस कहां था, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान जब प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर का वध करने जाते हैं तो साथ ले जाते हैं सत्यभामा को, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का बेटा है और सत्यभामा पृथ्वी भूदेवी का प्रतीक है, वो है साक्षात, वो है, जब तक वो नहीं कहेगी तब तक नहीं मारेंगे। और उसका और उसके पास 16,100 राजकुमारियां बंदी थी और उसके बाहर पहले पानी का रक्षा का था, फिर बिजली की रक्षा का था, आग की रक्षा था, ये जितने तत्व है इसके रक्षा की खाइयां बनी हुई थी, तो और उसकी रक्षा के लिए मूरा राक्षस था और मूरा को भगवान ने मारा तो मुरारी हो गए, फिर उसके बच्चे आए उन सबको मारा, फिर सुदर्शन चक्र से वो सब काटा, फिर जाके भौमासुर का भगवान ने युद्ध करते करते जब सत्यभामा ने कहे मारो इसको तब मारा, तो पृथ्वी देवी फिर प्रकट हुई, उसने प्रार्थना की कि इसके बेटे को आप आशीर्वाद दो और ये देखो मैं, आप आए क्यों हैं, यहां भगवान गए क्यों थे वहां। इंद्र जी ने आके भगवान को कहा कि मेरी मां आदिति के कुंडल भौमासुर जबरदस्ती ले गया है, वरुण ने कहा मेरा छाता ले गया है, देवताओं ने कहा हमारे खेलने का जो ये विशेष एक प्रांत था वो भौमासुर ने अपने अधीन कर लिया है, तो भगवान इंद्र के माता के कुंडल लेने के लिए, वरुण का छाता लेने के लिए वहां गए, तो आदित्य माँ, तो पृथ्वी माता ने प्रकट होके वो सब सामान भगवान को दिया कि ये वापस ले लो। फिर भगवान वहां से सत्यभामा के साथ गरुड़ के ऊपर चढ़ के स्वर्गलोक में गए और इंद्र को जाके वो सामान दिया कि ये आपकी माता का कुंडल है, ये छाता है और ये आपका जमीन भी अब आजाद है, आप इस पर्वत के ऊपर अब अपने अधिपति जमाओ। तो इंद्र ने बड़ी पूजा की। भगवान जब वापस आ रहे थे तो सत्यभामा ने कहा ये पारिजात का पुष्प है ना, ये पेड़ लेके चलना है, उनको ले लो। भगवान ने ले लिया और इंद्र लड़ने के लिए आ गया और लड़ाई हो गई। अभी तो इतना भगवान ने उसके ऊपर उपकार किया, एक फूलों का गमला उठाया और इंद्र झगड़ा करने आ गया। इंद्र लड़ाई कर रहा था। तो इसमें भगवान ने मूर राक्षस को मारा, भगवान का नाम मुरारी हो गया। तो मुरारी के गुण नाम रूप लीला को सुनने से, तो सुनने में सुनाने वाला छुपा हुआ है, तो किसी प्रमाणिक, और प्रमाणिक गुरु की परिभाषा क्या है, जो शास्त्रों के नियमों की शिक्षा दे। प्रमाणिक की परिभाषा ये शब्द ये लिखा है, प्रमाणिक गुरु वो जो शास्त्र के नियमों से चलाए। और गुरु देता क्या है प्रमाणिक, भक्ति की लता का बीज देता है। और भक्ति की लता का बीज क्या है, भक्ति की लता का बीज क्या है, शास्त्र के नियम और श्रद्धा, हमारी विश्वास बढ़ाए बस। भगवान का नाम भक्ति का बीज नहीं है, वो तो भगवान है। शास्त्र के नियम, भक्ति के नियम और भगवान में श्रद्धा, ये प्रमाणिक गुरु करता है। तो नियम जो है शास्त्र के वो प्रमाणिक, और ऐसे गुरु जो शास्त्र को जानते नहीं, मानते नहीं, शास्त्र का पता ही नहीं है, वो गुरु नहीं, प्रमाणिक गुरु नहीं है। प्रभुपाद ने हर जगह लिखा है बोनाफाइड क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं शास्त्र है ही नहीं उनके पास, गुरुओं के पास शास्त्र का अता पता ही नहीं है, अपना ही शास्त्र बना रखा है, तो इसलिए प्रमाणिक नहीं। तो गुरु को प्रमाणिक कहने का मतलब शास्त्र। और प्रभुपाद ने कहा हमारी संस्था भगवद गीता शास्त्र के ऊपर आधारित है, ये भगवद गीता के प्रस्तावना में है। ये कृष्ण भावना अमृत संघ, ये ऐतिहासिक है, ये स्वाभाविक है, ये प्रमाणिक है, क्योंकि ये भगवद गीता के ऊपर आधारित है। तीन बातें लिखी, प्रमाणिक है क्योंकि भगवान का शब्द है, वो प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, भगवान के शब्द हैं, भगवतवाणी है। ऐतिहासिक है, इतिहास में इसका टाइम है, कब इसको दिया गया, कैसे दिया गया, ये महाभारत इतिहास के अंतर्गत है, महाभारत हमारा बड़ा इतिहास है। प्लस स्वाभाविक है का मतलब क्या, हमने सोचा। तो प्रभुपाद ने कहा हमने इस कान की स्थापना लोगों को सुखी बनाने के लिए की। तो लोग सुखी जब होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या करते, आप लोगों के घर में कभी खुशी का मौका आए तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ घर में शादी है तो क्या करते हैं, हाँ नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं, यही करते हैं और कुछ करते हैं। खुशी का प्रदर्शन करने के लिए नाचना गाना और खाना है, ये स्वाभाविक है कि नहीं। वो तो एक बार नाचते हैं फिर सारी उम्र परेशान होते हैं, और यहां मंदिर में रोज नाचना, रोज गाना और रोज खाना, ये स्वाभाविक है कि नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि नहीं, रोज का काम है और इसमें परेशानी भी नहीं है, तो ये स्वाभाविक है, ये प्रमाण, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है ये संस्था, तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो अब क्या मुरारी के गुण रूप लीला का श्रवण करने से सारे कलेश पूर्ण रूप से विनाश हो जाएंगे। अब इससे तुलना कर रहे हैं, ये हो गया केवल श्रवण। श्रवण कौन सी भक्ति है, साधन भक्ति, ये नौदा भक्ति साधन भक्ति है, वैदि साधन भक्ति है, कौन सी भक्ति है?
वैदि साधन भक्ति।
अब जो दूसरा हिस्सा श्लोक का दूसरा भाग है ना, वो है असल में भाव भक्ति का। साधन भक्ति के बाद है भाव भक्ति। भक्ति तीन प्रकार की है, आप में से कौन कहे बताएगा? भक्ति तीन प्रकार की है, शुद्ध भक्ति तीन प्रकार की है। एक का तो नाम मैंने लिया, कौन सी? साधन। दूसरी का नाम भी मैंने लिया, कौन सा? तो बाकी बच गई तीसरी, कौन सी? प्रेम भक्ति। ये तीन भक्तियां हैं। साधन भक्ति दो प्रकार की है। साधन भक्ति कौन से दो प्रकार की है, कोई बताएगा? हाँ, वैदि साधन भक्ति और राग अनुगा साधन भक्ति। अच्छा, साधन भक्ति का फल क्या है? साधन भक्ति का फल है भाव भक्ति को जागृत करना। साधन भक्ति क्यों की जाती है? भाव भक्ति को जगाने के लिए। कैसे की जाती है? इंद्रियों और मन से। मन, वाणी और इंद्रियों से साधन भक्ति होती है। मन, इंद्रियों और वाणी से साधन भक्ति होती है। शास्त्र के निर्देश में होती है और गुरु के आदेश में होती है। ये साधी वेदन साधी वैदिक वैदिक साधन भक्ति के दो चीजें हैं, शास्त्र और गुरु के निर्देश में, और जिसके दो, और शरीर, वाणी और मन से, और इसका फल है भाव भक्ति को जागृत करना। तो भाव भक्ति कहाँ है बोलो? हमारे हृदय में पहले से पड़ी है। कैसे? जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसमें चलने का सामर्थ्य है, आपको उसको उंगली से पकड़ के समय का थोड़ा सा प्रयास अभ्यास करोगे तो बच्चा चलना सीख जाएगा। तो चलना तो उसके अंदर पहले है ना, आपने केवल अभ्यास कराया। तो साधन भक्ति अभ्यास है और भाव पहले से अंदर है, उसको जागृत करना। ये बात समझ में आ रही? बच्चे को उड़ाना चाहो, बड़े से बड़े पायलट के पास भेजो, उड़ेगा क्या? उसमें उड़ाना है ही नहीं तो उड़ेगा कहां? चिड़िया का बच्चे का उड़ेगा, आदमी का बच्चा नहीं उड़ेगा। कबूतर का बच्चा उड़ जाएगा, लेकिन आदमी का बच्चा नहीं उड़ेगा, क्यों? उसके अंदर है ही नहीं, कितनी भी शिक्षा तो नहीं उड़ेगा। और भाव का दूसरा, भाव के लिए दूसरा शब्द है रति। क्या शब्द है?
रति।
इस श्लोक में रति है, तो ये रति है। भाव जागृत कैसे होगा? कैसे भाव जागृत होगा? साधन भक्ति करने के बाद भी भाव, वो बीज के रूप में तो पड़ा है हमारे अंदर। साधन भक्ति करेंगे तो वो जागृत होगा, लेकिन फिर भी एक चीज जरूरी है, वो क्या है? हाँ जी, प्रेम। तो प्रेम तो भाव जब परिपक्व होता है उसी को प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उगने से पहले लाली जो होती है उसको भाव कहते हैं, और सूर्य उग गया तो प्रेम हो गया। सूर्य अंश, सूर्य का अंश भाव है, और सूर्य पूरा उग गया तो प्रेम हो गया। तो वो कच्चा है, वो पक्का है, बस इतना ही फर्क है। अब क्या प्रश्न पूछा? क्या पूछा प्रश्न अभी? आपके पास बीज है, आपने बोया है, अब बीज को अंकुरित होने के लिए और क्या चाहिए? पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए। ये मिलेगी तब भाव प्रकट होगा। कितना भी साधन करो, जब तक ये नहीं हृदय में प्रवेश करेगी तब तक भाव जागृत नहीं होगा। और ये क्या है और कहां से मिलेगी? यह है संवित और हलादिनी शक्ति। भगवान की स्वरूप शक्ति है संवित, हलादिनी और सैंदनी। संवित शक्ति का काम है भगवान की पहचान कराना, और हलादिनी शक्ति का काम है आनंद का अनुभूति कराना। ये जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक भाव अंकुरित नहीं होगा। ये कहां से मिलेंगे? या तो भगवान कृपा करके दे दे, भगवान की कृपा से मिल जाए, जो बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो इतना दुर्लभ है जैसे किसी व्यक्ति को ऑनररी पीएचडी डिग्री मिलनी, भाई किसी को डॉक्टरी डिग्री देनी है भाई, तो वो किसी एक को ऐसे देते हैं बिना पढ़े के, तो वो इतना मैं तो फिर कैसे मिलेगा? किसी भगवान के रसिक भक्त के हृदय से कृपा करके वो देगा, तभी भाव का उदय होगा। इसलिए भक्तों का संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो साधन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये है बर्तन को साफ करना, चेतो दर्पण मानना। लेकिन ये जब तक संवित और हलादिनी शक्ति उसमें नहीं आएगी तब तक भाव नहीं जागृत होगा। इसलिए मुख्य है भक्तों का संग, और ऐसे भक्तों का संग जिनके हृदय में भाव पहले से प्रेम प्रकट हो चुका है, और वो और उससे मांगोगे तब देगा, नहीं तो नहीं देगा। गिरिराज महाराज कहते हैं आपने समोसा बना लिया, आपके आटे लाया, आटा बनाया, लालू डाला, अंदर सब कुछ माल डाला, अब आपके पास घी नहीं है तो क्या समोसा बनेगा क्या? भाई तलने के लिए घी चाहिए ना, तो मांगोगे तब ना, कहीं से किसी के पास होगा, दे तो उसकी मर्जी, नहीं दे तो उसकी मर्जी। तो हमारी भक्ति में भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है कि जब वो कृपा करके ये शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तभी भाव जागृत होगा। तो अब इस श्लोक में कहते किम वा पुनः, तो फिर क्या बात करें? जब भगवान की कथा कीर्तन सुनने से ही प्रमाणिक भक्तों के मुख से सारा कलेश नाश हो जाता है तो फिर क्या कहना किसका? तत् तत् मतलब भगवान के चरणारविंद, चरण कमल, अरविंद कहते हैं कमल को केजरीवाल बने नहीं, अरविंद का मतलब ये है, कहने का मतलब अरविंद का मतलब है कमल। भगवान को कहते अरविंदाक्ष, जिसके चरण, जिसकी आंखें कमल की पंखड़ी जैसी हैं, कमल नैन। चरण और कमल के अंदर क्या होता है? जिसके ऊपर भौंरा मंडलाता है, क्या चीज है जो कमल के ऊपर भौंरा मंडलाता रहता है? पराग, पराग, पराग का मतलब खुशबू, सुगंध। तो भगवान के चरणों से भी एक ऐसी अद्भुत सुगंध निकलती है, चंदन की और तुलसी की मिश्रित, और एक विशेष पराग उनके चरण कमल की है, जिसकी अनुभूति केवल चार कुमारों ने की, चार कुमारों ने की, और उनका ब्रह्म आनंद उस वक्त कपूर की तरह उड़ गया। और भगवान का क्या नीचे शब्द लिखा है? सेवारति, सेवारति का मतलब भाव एकदम जागृत हो गया। और सेवा जहां आए वहां भक्ति समझना चाहिए, भक्ति की रति। तो भगवान के चरणों की सुगंध, भगवान के चरण कमलों की चरण कमलों की सुगंध क्या करेगी? सेवा रति, भक्त भाव भक्ति, सेवा रति का मतलब भाव भक्ति। और प्रभुपाद के तात्पर्य में इसको लिखा है राग। राग की परिभाषा क्या है? आप बहुत से बार कई बार सुना होगा, क्या सुना होगा? राग अनोगा साधन भक्ति, उससे मिलेगा क्या? राग अनुगीय भाव, उससे होगा राग अनुगीय प्रेम। केवल साधन वैधि साधी भगत भक्ति से होगा वैधि साधन भाव और वैधि साधन प्रेम, वो ले जाएगा वैकुंठ तक। और राग साधन, रागनोगा साधन, रागनोगिया भाव और रागनोगिया प्रेम ले जाएगा गोलोक वृंदावन। दोनों जगहें अलग है, तो जब राग आता है, राग अनुंगा का मतलब क्या है, जिनको राग है उनके पीछे चलना, अनुगा का मतलब अनुगामी बनना। तो किसके अनुगामी बनना, ये इसके अंदर पड़ा है श्लोक में, गुणानुवाद अनुवाद, जो ये प्रेम जिसके हृदय में पड़ा है उसके पीछे चलो। तो कौन से भक्तों के पीछे चलने से हमारी, हमारा राग अनुगा भक्ति चालू होगी, उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। राग आत्मिक भक्त के अनुगामी बनने से, उनके पीछे चलने से हमारा, हमारी भक्ति राग अनुगा कहलाती है। तो राग अनुगा भक्त कौन, राग आत्मिक भक्त कौन है, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के गो पार्षद, राग आत्मिक भक्त हैं गोपियां, माधुर्य रस की राग आत्मिक भक्त हैं नंद यशोदा आदि बड़े गोप, वात्सल्य प्रेम के राग आत्मिक भक्त है, श्रीधामा सुधामा मधुमंगल सुबल सखा, सखा रस के राग आत्मिक भक्त हैं, रक्तक पत्रक आदि दास्य भक्त के राग आत्मिक भक्त है, और शांत राग आत्मिक में नहीं है। शांत भक्त का उदाहरण किसी को आता है, शांत भक्त कौन है, चार कुमार नव योगेंद्र। तो शांत भक्ति कितनी महान है, चार कुमार जो भगवान का अवतार है वो शांत भक्ति का उदाहरण है। तो शांत और दास भक्ति में अंतर क्या है, सेवा। शांत भक्त में दो चीजें होती हैं, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास और निष्ठा होती है, और संसार से पूरा विरक्ति और त्याग होता है। ये दो चीजें उसके पास हैं। इसमें ममत्व आ जाए कि भगवान मेरा है, भगवान बड़ा है, भगवान महान है, ये तो ठीक है, भगवान मेरा है, ममत्व आ जाए तो दास भक्त, मेरा स्वामी है। ममत्व आने से प्रेम तो उधर भी है, शांत में भी प्रेम है, लेकिन प्रेम के बाद स्नेह आएगा तब दास्य भक्ति होगी। हमने प्रेम तक सुना है, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम तक ही शिक्षा दी गई है। प्रेम के बाद और सात स्तर, आठ स्तर हैं। प्रेम के बाद के स्तरों का नाम, नाम प्रेम के बाद है स्नेह, स्नेह के बाद है मान, मान के बाद है प्रणय, प्रणय के बाद है भाव महाभाव। ये ऊपर के स्तर है, एक एक स्तर बढ़ता जाएगा, दास से सखा हो जाएगा, सखा से माधुर्य हो जाएगी, बढ़ता जाएगा, और अंतिम स्थान है वो माधुर्य का, राधा रानी का है केवल। तो ये रूप गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन दूसरे पुस्तक में लिखा है, कौन सा, इसके बाद वाला उज्ज्वल निर्मणि में इन सब का वर्णन किया है। और ये सब हमको इस जीवन में पढ़ने हैं। आज ऐसे ये शब्द इसमें ऐसे पढ़े हैं कि ये बातें करने की जरूरत पड़ गई, नहीं तो इस श्लोक को ऐसे पढ़ने से, ये शब्द से हम पढ़े। तो भगवान की कथा सुनने से कलेश नाश होता है, क्या हमारा उद्देश्य कलेश नाश करना है, क्या नहीं, प्रेम प्राप्त करना है। तो इस श्लोक परिपूर्ण, कितना पूर्ण श्लोक है कि कलेश नाश करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको प्रेम प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। तो जब कथा सुनने से कलेश नाश हो जाता है तो उनकी क्या बात करें जिनको भगवान के चरण कमलों के पराग में, सौरभ में, सुगंध में आसक्ति हो गई है, आसक्ति से भी रति हो गई, आसक्ति के बाद रति आती है। आसक्ति साधन का स्तर है और रति भाव का स्तर है। और रति, दुनिया में रति पता है किसका कहते हैं, लड़का लड़की बैठे रहे, घंटे बीत जाए, बातें करते रहे, उसको बोलते हैं रति। दुनिया में, दुनिया में रति की परिभाषा ये है, तो भाव जिसको होता है वो भगवान की सेवा में एक क्षण भी नहीं गंवाता। उसका पहला लक्षण ये है, वैरथ काल नहीं गंवाना, ये भाव भक्ति का पहला लक्षण। क्या शब्द है? वैरथ अव्यर्थ काल, अव्यर्थ कालत्व, पहला लक्षण है। तो जिसको भगवान के चरणों के सुगंध में आसक्त, वो उसमें उसकी रति, उसकी सेवा करने में रति, सेवा रति आत्म लब्धा, तो समझो कि उसने अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसका जीवन सफल होगा। आत्मलब्धा मतलब अपने आत्मलब्धा का प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ लिखा है आत्मलब्धवा, जिन्होंने ऐसी आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ली है, आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ली है, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। तो अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझ में आया सबको? हरे कृष्ण। इस श्लोक में साधन भक्ति है, भाव भक्ति है, और भाव भक्ति में भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में राग भाव भक्ति का विशेष रूप है, भगवान के चरणों में आसक्ति है। तो अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के, अब भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? यहां मुरारे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप इत्यादि, ये कहाँ है? गुणानुवाद। और कीर्तन, कीर्तन कहाँ है? गुणानुवाद कीर्तन है। तथा श्रवण, श्रवण पढ़ा है या? तो गुणानुवाद के लिए क्या अनुवाद में लिखा है? भगवान के नाम रूप आदि का कीर्तन, ये गुणानुवाद की परिभाषा है। और इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कीर्तन करने वाला होगा तब कीर्तन होगा ना, कीर्तन करने वाला इसके अंदर वो है असल में भक्त, इसका मतलब भक्त के संग में होगा ना, ये वो इसके अंदर इंप्लाइड है। मात्र से श्रवण, मात्र कीर्तन श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो जा सकती हैं। कष्टप्रद मतलब समक्लेश, अवस्थाएं क्या हो सकती है? शमित हो सकती है, समाप्त हो सकती है। वो सकती हैं क्यों लिखा है? जब सुनेगा तब होगी, अपने आप तो नहीं होगी। हो सकती है का मतलब जब अभ्यास करेगा तब होगी। अब आगे दूसरे भाग को कह रहे हैं, दूसरे भाग का अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, फिर उनके विषय में क्या कहा जाए? किम वा, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए, भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध, धूल धूल शब्द इसमें है नहीं, भगवान के चरण कमलों के धूल की सुगंध, भाई चरण कमल भगवान के जाके नासा तो कराचे का तो नहीं लगाएंगे ना। उनका जहां चरण कमल पड़े हैं उस धूल में भी सुगंध होती है। ये गोपियों ने वेणु गीत में कहा है, जहां से भगवान आपके चरण जाते हैं वहां उसको हिरणियां उसको सूंघ सकती हैं, भीलनियां उसका सुख ले सकती हैं, लेकिन हमको और सौभाग्य नहीं। तो चरण धूली भगवान की, उस सुगंध में क्या हो जाए? आकर्षण प्राप्त कर लिया हो, इसका मतलब जिसकी भाव भक्ति जागृत हो गई हो, उसका क्या कहना? अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। अब प्रभुपाद जी पहले कहते हैं शास्त्र में दो रास्ते बताए गए हैं जिससे हम लिखा है इंद्रियों को वश में करने के। इंद्रियों को वश में करना क्यों लिखा है? क्यों इंद्रियां वश में नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। कहां लिखा है? ये संस प्रसजा भोगा दुख योनिय एवते। क्या लिखा है? जो इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों के विषयों को भोगता है, उसी भोग के गर्भ में दुख जन्म लेता है। तो दुख का जन्म कहां होता है? दुख के गर्भ योनि कौन सी? योनि का मतलब गर्भ का स्थान। दुख जन्म लेता है इंद्रिय भोग में, इंद्रियों के विषय के भोग में दुख जन्म लेता है। तो इंद्रियों को वश में करेंगे तो दुख होगा ही नहीं, तो क्लेश नाश हो गया ना। भगवान के कीर्तन करने से पाप नाश होता है, लेकिन पाप का फल दुख रह जाता है। पाप करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख कैसे नाश हो? प्रणामो हरिम दुख चमनम, भगवान के सामने माथा टेकने से दुख चला जाता है। कीर्तन करने से पाप जाता है और प्रणाम करने से दुख जाता है। ये भागवत का पूर्ण आहुति का श्लोक है। दो ही साधन बताए हैं, कीर्तन करो प्रणाम करो, तो पाप भी गया दुख भी गया। तो इंद्रियों को संयम में रखने के लिए दो रास्ते वेद ने बताए हैं। अब दो रास्ते कौन से हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनमें से एक ज्ञान योग है। एक ज्ञान योग है अर्थात, प्रभुपाद लिखते हैं अर्थात, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। ये तीन चीजें प्रभुपाद लिखी। प्रायः ज्ञान योग वाले केवल ब्रह्म को ही जानने का अभ्यास करते हैं, लेकिन ज्ञान के अंतर्गत ही कुछ लोग योग का अभ्यास करते हैं, तो वो परमात्मा को जानने का अभ्यास करते हैं। लेकिन दोनों, ये दोनों भगवान के ऊपर आश्रित है। परमात्मा भी भगवान के ऊपर आश्रित है, ब्रह्म तो भगवान के ऊपर आश्रित है ही। तब कौन सा श्लोक कहेंगे? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और परमात्मा भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, तब क्या कौन सा श्लोक कहेंगे? भगवान के भगवत गीता का श्लोक कहना चाहिए, सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। क्या करते हो भगवान? मत समर्थिर ज्ञानम अपोहनम च उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता च, ये सब काम करता हूं। तो एक ज्ञान का मार्ग है जिसमें ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा और भगवान को जाना जाता है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति रुचि, प्रेम भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। दूसरा है, दूसरी विधि है, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भगवान की दिव्य, पहले तो दिव्य बोला, ज्ञान में दिव्य शब्द नहीं है। क्यों? ज्ञान में दिव्य शब्द नहीं है और भक्ति में दिव्य शब्द क्यों है? ज्ञान सतोगुण में होता है और सतोगुण गुण ही हो गया तो दिव्य नहीं होगा, और भक्ति तीनों गुणों से परे है इसलिए दिव्य है। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है और इसका भी त्याग करना पड़ेगा तब भगवान प्राप्त होगा। ये 11वें स्कंद में है। इसलिए दिव्य क्यों कहा भक्ति को? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे। तो भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य के साथ एक शब्द लिखा है दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा, प्रेमा भक्ति रूपी सेवा। तो भक्ति शब्द का प्रभुपाद जी ने अनोखा अर्थ निकाला है, प्रेममय सेवा। और दिव्य प्रेममय सेवा मतलब भगवान दिव्य है उसकी प्रेममय सेवा, और जो तीनों गुणों से परे है। आप किसी से प्रेम करेंगे कैसे दिखाएंगे? सेवा करके। किसी से प्रेम करते हो उसको प्रदर्शन करने का रास्ता है सेवा। आप प्रेम करते हो भगवान से तो भगवान के लिए भोजन बनाओगे, वस्त्र बनाओगे, फूलों का हार बनाओगे। प्रेम करोगे तो बनाओगे, नहीं तो क्यों बनाओगे? तो आप इतने, जो बाहर माला वाला बैठा है वो पैसे लेता है, या माला वाली माता जी माला बनाते पैसा लेती है? ये प्रेम से बनाती है और वो पैसे से बनाती है, दोनों में अंतर है, काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। तो जहां प्रेम होगा वहां सेवा से ही पता लगेगा कि सेवा कर रहा है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जुट जाता है का मतलब क्या है, जुट जाता लिखा है, जुट जाता है का मतलब है इधर उधर नहीं देखता है, बिल्कुल तलीन हो जाता है उस सेवा में, जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से, ये दो लोकप्रिय विधियां हैं, यहां पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहा कह करके संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए परीक्षा नहीं करनी पड़ती, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अब प्रभुपाद ने कहा इन दो मार्ग बड़े प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में आप देखें तो सन्यासी ज्ञान मार्ग के हैं और वैष्णव भक्ति मार्ग के हैं, दो ही है, दो विभाग है। वैष्णव को कहते हैं वैरागी और ज्ञानियों को कहते हैं सन्यासी। ये भाषा है, साधु समाज की भाषा ये है। ये कुंभ मेला में दो कैंप लगते हैं, एक सन्यासियों का कैंप, एक वैरागियों का कैंप। वैरागी में वैष्णव होते हैं और सन्यासी में ज्ञानी होते हैं। दोनों महान है प्रभुपाद के, लेकिन दोनों में भक्ति वाले महान है। यहां बताया क्यों, दो बातें बताई क्यों महान है, क्योंकि इनको न ज्ञान के फल की आवश्यकता है, उन सबको फल चाहिए और इसको फल नहीं चाहिए, उनको भगवान से फल चाहिए और इनको भगवान ही मिल जाता है इसलिए फल की जरूरत नहीं, उनको फल की ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। भुक्ति का मतलब कर्मी कर्म योगी, मुक्ति का मतलब ज्ञान योगी और सिद्धि का मतलब अष्टंग योगी। सकल अशांत ये उनको शांति नहीं है बेचारों को, क्योंकि इनको फल चाहिए। और कृष्ण भक्त अशान निष्काम, उसका कोई कामना नहीं, उसकी कामना है भगवान की कामना से मिली हुई, उसकी स्वतंत्र कामना नहीं है। इसका मतलब क्या है, कामना नहीं की परिभाषा क्या है, नो सेपरेट इंटरेस्ट, उसकी अलग कामना नहीं है, भगवान की कामना से उसकी कामना मिली हुई, वो भगवान की कामना से एकत्व है, भिन्नता नहीं है। अब क्या लिखा है, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसे पुण्य कर्मों के सकाम रूप फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने के लिए दो अवस्थाएं हैं, अब भक्ति को पूरा करने के लिए दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्र के नियम अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था। अब ऐसे मैंने पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, हमने इसके ऊपर पहले चर्चा कर चुकी है, याद है साधन भक्ति, ये शब्द क्या है साधन भक्ति। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। पहली, मान्य शास्त्रों का मतलब शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा, शरीर वाणी और मन द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, मतलब साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति, ठीक है। दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना, यह है राग भक्ति। भगवान के चरण, इसके लिए राग भक्ति करने के लिए एक ही मात्र आपके पास धन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तो राग भक्ति चालू होगी। वो क्या है, लोभ, लोलुप्यम एकलम, लोभ होना चाहिए, मुझे भगवान के चरणों की सेवा करनी है, करनी है, करनी है, कैसे भी करनी है, कुछ भी करना पड़े करनी है, इतना लोभ हो ऐसा, अरे पता नहीं होगी नहीं होगी, कितनी मुश्किल है, इसका मतलब लोभ है ही नहीं। कहते हैं आप पूछो कि आज प्रसाद में क्या बना है, इसका मतलब आपको भूख नहीं है, भूख होती तो जो भी है खाना ही है बस। अब पूछ लिया कि आज क्या बना है, इसका मतलब भूख नहीं। तो लोभ उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी करना पड़े हमको तो लोभ, लोभ ही केवल एक हृदय में लोभ हो, हमको ये भगवान के चरणों की सेवा करनी है, भगवान के चरणों की सेवा, ये लोभ एक ही। एलिजिबिलिटी फॉर राग भक्ति इज ग्रीड, ग्रीड है ना, लोलुप्य। तो लोभ करना मुश्किल नहीं है, सबको पैसा का लोभ है, वही लोभ भगवान के चरणों में हो जाए। जिन चरणों में लक्ष्मी बैठी होती है आप ऐसे समझ के करो तो भी काम चल जाएगा। भाई लक्ष्मी कहां बैठी होती है, भगवान के चरणों पे बैठी है ना, तो आपको वही चाहिए तो वही मिलेगा। आप कहां ढूंढ रहे हो, दुनिया के अंदर सारे दुख का कारण लोभ है, सारे दुख का कारण लोभ है। पहले होती है कामना, पूरी नहीं होती है तो होता है क्रोध, और पूरी होती है तो होता है लोभ। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और पूरी हुई तो लोभ, दोनों की एक तरफ खाई, एक तरफ खड्डा है एक तरफ खाई है, जहां गिरना है वहां गिरो, बचना किसी तरफ से नहीं है। क्रोध से बचेगे तो लोभ होगा, और लोभ से बचोगे तो क्रोध होगा। और ये उत्पन्न कहां से होती है, रजोगुण से, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है, और रजोगुण का व्यक्ति असुरी प्रभाव वाला होता है। असुरी और देवी में अंतर क्या है, देवी संपदा, संपदा का मतलब धन, और असुरी संपदा मतलब असुरी धन, असुर के पास कौन सा धन है गुणों का, और देवी के गुणों वालों के पास कौन सा धन है, तो इन दोनों का विभाजन कैसे करेंगे, कौन देवता है कौन असुर है कैसे पता लगे समाज में। जो सतोगुण के हैं वो देवती गुण वाले हैं, रजो और तमोगुण के असुर। लेकिन ये एक कारण है, भगवद गीता में मुख्य कारण कौन सा लिखा है, मुख्य कारण है जो शास्त्रों के नियम का पालन करता है वो देवता, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करता है वो असुर, ये मुख्य कारण। और सतोगुण रजोगुण है उसकी पहचान। एक तीसरा कारण है पद्म पुराण में, विष्णु भक्ता देवता तत्व प्रिय असुरा, जो भगवान विष्णु के भक्त है नारायण गोविंद के भक्त है वो देवी और संपना वाले, और जो उसके विपरीत है वो असुर। अब दुनिया में असुर ज्यादा हैं कि देवता, असुर, असुरों से दुनिया भरी हुई है। लोए सोए हुए ज्यादा लोग ज्यादा है दिन में कि जागे हुए, सोए हुए। एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि हमारे राज में लोग अंधे ज्यादा हैं कि आंखों वाले, बोला अंधे, महाराज अंधे कैसे है, बोला चलो पता करते हैं कैसे। बोला महाराज को कहा कि आप बाजार के अंदर साइकिल के ऊपर चलो समझो, तो सब लोग कहते अरे महाराज ये क्या, बोला लिखो अंधे की लिस्ट में, देख नहीं रहा है साइकिल पे जा रहा है। लिखो अंधे की लिस्ट में, देख रहा है फिर भी पूछ रहा है। भाई बड़ा आदमी कोई ऐसा काम करेगा समझ, अरे क्या कर रहे थे, क्या अंधा है क्या, तो सारे अंधे हैं और सब सोए हुए हैं। इसलिए भक्ति विनोद खाया, जीव जागो जीव जागो, इसका मतलब क्या है, खा रहे पी रहे उठ रहे कमा रहे हैं, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए अंधे हैं, सोए हुए जागे नहीं है, इसलिए उनको जगाना जरूरी है। तो यहां ये कौन सी भक्ति बड़ी, साधन भक्ति और राग भक्ति, वैधी साधन भक्ति और राग भक्ति दोनों का वर्णन है। अब प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है, जो मतलब नए भक्त करते हैं, मतलब आरंभिक स्टेज में की जाती है, और किसी शुद्ध भक्त के निर्देश में संपन्न की जाती है। देखो ऊपर शास्त्र था, अब शुद्ध भक्ति का निर्देश आ गया, ये दोनों चीजों की जरूरत है। इसके अंदर पूरा पूरा भक्ति रसामृत सिंधु इस तात्पर्य में पढ़ा है। हमने तो पहले इसके तात्पर्य ऊपर आगे कर लिया, अब पढ़ा भी रहा हूं मैं भी, वह भी पढ़ रहा हूं क्या लिखा है, लेकिन इसमें सब मिल रहा है ना। इसको मतलब इसका मतलब संस्था के तदात्म्य करके चलना है कि पता लगता है इसके यहां क्या होना चाहिए। अब क्या लिखा है आगे, दूसरी अवस्था राग भक्ति है, दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व परोड़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वत भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। स्पॉन्टेनियस, अपने आप, उसको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेवा में लग जाता है। उसमें शास्त्र कहेगा तब करूंगा, या कोई दूसरा भक्त कहेगा तब करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप करता रहेगा। अच्छा जी, अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह से दे रहे हैं, भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। यह अब पहली लाइन का अनुवाद यहां लिखा है, पहले मुख्य बात थी नीचे वाला भाग, उसका पहले पूरा लिखा, अब आखिरी एक पहली लाइन का वर्णन कर रहे हैं। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या योग आसनों का अपनाया जा सकता है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कोई आदमी का कोई उद्देश्य है तो ये ज्ञान मार्ग में या योग अभ्यास करे, फिर किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल देने में असक्षम है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का विशेष टीका है। केवल ज्ञान आप कितना भी अर्जित करो फल नहीं देगा, योग कितना भी करो फल नहीं देगा, जब तक उसमें थोड़ी भक्ति का मिश्रण नहीं करोगे। इसका कैसी भी सब्जी बनाओ, नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा ना, सब स्वाद आएगा बगैर नमक के, डालना थोड़ा पड़ता है लेकिन स्वाद तब आता है। ऐसे साधन कोई भी करो, जब तक भक्ति उसके अंदर नहीं डालोगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस ऐसी भक्ति को कौन सी भक्ति कहते हैं, मिश्रित भक्ति। किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना, ये भक्ति मिश्रित भक्ति हो गई, भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल देने में असक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेम भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वो परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। ये परिपूर्ण पूर्णता यहां होती है, राग भक्ति से भगवान को वश में किया जा सकता है, साधन भक्ति से नहीं, राग भक्ति से। राग वाली भक्ति जो है उसमें भगवान वश में हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, सारा दिन कहते हैं महान हो महान हो, उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो मुझे गाली देता है कि कहाँ चला गया, कलियां कालिया कहाँ चला गया, इधर से उधर गया है, ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे को मानते हैं। एक बार एक वृंदावन के भक्त चले गए नाथ द्वारे, बेचारों के पास पैसे थे इतने, किराया के ले गए, बाकी किराए वापसी के पैसे थे। उधर भूख लगी, बोला प्रसाद पैसों का मिलता है, उधर सब प्रसाद पैसों का मिलता है। तो अंदर भगवान को खड़े थे, बोले इससे तो हमारा ब्रज अच्छा है, सबको रोटी मिलती है, इधर हम बड़े साफ खड़े हो, राजा बन के खड़े हो, खाने के लिए दो टाइम की रोटी भी दे नहीं सकते, प्रसाद भी पैसों का मिलता है, हमें ये पता होता तो यहाँ नहीं आते, ब्रज में ही बैठे रहते, इससे तो हमारा नंदगांव बरसाना अच्छा है,
ऐसे करके रूठ के जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। बोला नहीं आएंगे तेरा दर्शन करने, देखा तेरे को। उधर जाके बैठे तो एक पुजारी बहुत बड़ा टोकरा महाप्रसाद का लेके आया। बोला कौन है वो वृंदावन वाले, कौन आए हुए हैं यहाँ? बोला क्या है? बोला प्रसाद। बोला पैसे तो है नहीं? बोला नहीं, भगवान नाथ जी ने भेजा है। बोला भगवान ने भेजा है? बोला नहीं, भगवान ने भेजा है, आप लो। तो कहते अगर तुम्हारे को पहले ही गालियां सुननी तो हमें पहले कह रहा होता, भूख क्यों मारा? आपको इसमें ही अच्छा लगता था तो पहले कह दिया होता। वो बोलते हैं हमने खाया और वहां से लाए वृंदावन में हमने बांटा, इतना प्रसाद दे के गया। तो भगवान को ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण द्वारका में थे, भीमसेन मिलने गया तो कहा नहीं भगवान इस वक्त किसी काम में है, आप थोड़ी देर रुक जाओ। फिर कह रहे जल्दी जब मुझे जल्दी जाना है, कभी आज तक ऐसे हुआ नहीं, तो बोला भोजन कर रहे हैं। अब भीमसेन को आया गुस्सा, बोला अंदर सीधा चला गया, बोला भोजन मुझसे पहले करते हो, बड़ा भाई मैं के तुम? अब भगवान हर्षण के मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ द्वारका में सब हाथ जोड़े कहते हैं द्वारकाधीश, मैं पक गया था कोई गाली देने वाला नहीं था, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए, अब मैंने कुछ नहीं खाया, भोजन लगाया, आओ बैठो खाए। तो भगवान को ये राग भक्ति में भाई यशोदा मैया है तो बांध भी लेती है, अब कोई शंकर जी बांध सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी बांध सकते हैं, लक्ष्मी बांध सकती है, लेकिन गोपी ने बांध दिया। तो ये जो भगवान से प्रेम करने वाले भक्त है वो भगवान को वश में कर लेते हैं, वो कुछ भी कहते हैं भगवान उनके वश में हो जाते हैं। और ये कृष्ण भावना अमृत संग में आने वाले भक्तों के अंदर बिना जाने, आप नहीं भी जानो तो आपके अंदर सॉफ्टवेयर राग भक्ति का डला हुआ है, आपको पता नहीं है लेकिन उसके अंदर डला हुआ है। रोज तुलसी पूजा सुबह शाम करते हैं, क्या कहते हैं? ब्रज दियो बास, कुंज दियो बास, राधा कृष्ण सेवा दियो, रोज कहते हैं। नहीं तुलसी महारानी, तुलसी महारानी राग आत्मिका भक्त है, हम इसकी रोज पूजा करते हैं और रोज कहते हैं, हमको मालूम नहीं है क्योंकि अभी तक हम कच्चे हैं, लेकिन हम कर रहे राग मार्ग का साधन भक्ति कर रहे हैं, राग भक्ति प्रकट होगी, टाइम लगेगा। जैसे पहले टाइप करते हैं 1 2 3 4 एक देख देख के लिखते हैं और जब तैयार हो जाते हैं तो इधर देखते हुए सब कुछ लिखते रहते हैं, तो राग भक्ति होती है तैयारी, अभ्यास करने से हो जाती है। अरे कृष्णा प्रसाद खाने के लिए चले जाओ। ये भाव भक्ति की पहचान है। अरे कृष्णा धन्यवाद। या तो प्रेम साधन भक्ति से राग भक्ति में आओ और राग भक्ति से प्रेम होने से भगवान अजीत भी जीता जाता है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य। आज का तात्पर्य बहुत अच्छा है, सारी भक्ति का रहस्य इसके अंदर लिखा हुआ है। केवल तात्पर्य इसके पढ़ के चले जाते तो काम नहीं चलता, अच्छा हुआ उसका पहले से विश्लेषण कर लिया। हाँ जी स्थित है नहीं, नहीं जब गुरु जी आते हैं जब हमारी स्थिति वैसी होती है वो थोड़ा सैंपल होता है भाव भक्ति का, गुरु जी जाता है तो फिर हम वापस साधन में आ जाते हैं। वो थोड़ा सैंपल देखना है तो वो है, उस वक्त जो सबकी स्थिति होती है वो भाव भक्ति की होती है। सभी जैसे चपके चपके होते हैं और महाराज की गाड़ी गई तो सब वापस जहां थे वहीं आ जाए भाव। उस स्थिति को बनाए रखे तो भाव भक्ति में है, हर समय वही भाव बना रहे कि मेरा गुरु मुझसे अलग तो है नहीं, भगवान तो मुझसे अलग है ही नहीं, हर तो ये भाव बना रहे तो समझो कि वो भक्ति का स्तर आ गया। आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, हमारा वही भाव बना हुआ तो ये स्थिति उसका सैंपल यही है, सब उत्साह में होते। हरे कृष्ण धन्यवाद।
कोई प्रश्न तो नहीं है ना, और कूपन किसको नहीं मिला? हाँ जी, क्या है? क्लेश समम अशेष क्लेश समम विदधते, हाँ इतना तो मेरे को याद है, इसके बाद है अशेष क्लेश अशेष संकलेश समम विदधते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे किम वा तत्चरणारविंद पराग सेवा रतिर आत्मलब्ध्वा। असल में ये सब एक दिन में इतनी बार उच्चारण करते हैं याद होना चाहिए, लेकिन हमारी रति नहीं है, हमारे को लोभ नहीं है, लोभ होता तो ये याद हो जाता, एक निखाय लिख के रख दो जेब में, अब लिखने की भी तकलीफ नहीं है, फोन पड़ा है फोटो निकाल के रख दो और दिन में 10 बार देख लो इसको, बोले आज का हमारा यही टारगेट था, कर लिया, और फिर इसके दिमाग में सब बातें रखो तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये हमारी इच्छा नहीं है, बातें इच्छा हो तो कोई मुश्किल नहीं है, इच्छा शक्ति हमारी थोड़ी दुर्बल है, नहीं तो एक श्लोक रोज का याद करना कौन सा मुश्किल है भाई, नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कह रहे थे कैसे क्या करना पांडवों का कष्ट भीष्म पितामह कहते हैं कर्मों का नहीं है, भीष्म पितामह कहते हैं तुम युधिष्ठिर धर्मराज तुम्हारे भाई धर्म के ऊपर चलते हैं, ब्राह्मणों के संरक्षण में है आप सेवक है, कृष्ण आपका मित्र है और आपका संदेश वाहक है और आपका भाई का सारथी है, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे दुख क्यों आए, और फिर भीष्म पितामह के ये सब काल के कारण है, और फिर भीष्म पितामह कहते हैं ये काल कृष्ण के इशारे से काम करता है, ये सब इसने योजना बनाई थी आपको इन परिस्थितियों में डालने के लिए। तो फिर तो कहता है युधिष्ठिर फिर हमको पता क्यों नहीं लगा, बोला इसके मन की बात शंकर जी नहीं जानते हैं, नारद जी नहीं जानते हैं, कपिल देव नहीं जानते हैं, तो और तुम और हम कहां से जानेंगे। और प्रभुपाद का तात्पर्य है कि पांडवों के ये दुख उनके कर्मों के कारण नहीं थे, भगवान उनको विश्व विख्यात करने के लिए इन परिस्थितियों से गुजारा था, जैसे सोने को गर्म करते हैं तो कुंदन होता है, पत्थर को छीलने से छिलते हैं तो मूर्ति बनती है पूजित होती है, ऐसे पांडवों को मूर्तिमान रूप से भक्तों के रूप में प्रतिष्ठित करना था, इसलिए इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उनका कोई कलेश उनका और वो कलेश उनको सुखदाई थे, इसलिए तो कुंती महारानी कहती है वो सब दुख वापस आए, वो बड़े अच्छे थे क्योंकि भगवान आपकी याद आती थी। अब राज दे के जा रहे हो, ये राज हमारे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप जा रहे हो, इससे वो दुख अच्छे थे, तो वो दुख भगवान के तरफ से थे इसलिए अच्छे लग रहे थे, कर्मों के होते तो किसी को अच्छे नहीं लगते, नहीं तो कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना नहीं करती। पांडवों का कोई कलेश नहीं था और कर्मों का कुछ नहीं था, भगवान एक भगवान कच्चे भक्तों से सब कुछ छीन लेता है और पक्के भक्तों को सब कुछ दे देता है, कच्चे से सब कुछ छीन लेता है और उसको लगता है कि कष्ट हो रहा है, भाई पांडवों से राज छीन लिया पक्का करने दिखा रहे थे। ये परिभाषा भागवत में दो परिभाषाएं, कच्चे भक्तों से भगवान सब कुछ स्नेही ले लेते हैं, फिर वो भगवान के शरण में पूरा आ जाते हैं, पक्के होते हैं तो भगवान उसको इतना देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता, इसलिए आप कच्चे मत रहो पक्के हो जाओ तो समस्या का समाधान हो जाएगा। एक जगह मैंने ये जब कहा कि पढ़ रहे थे कहीं ये लिखा था, एक तात्पर्य में ऐसा था, कहां कथा कर रहे थे कहीं था भागवत में था, तो एक ने कहा मैं बहुत परेशान था, भगवान ने कहा जब मैं किसी बहुत प्रेम करता हूँ उसका सब धन छीन लेता हूँ मेरे को डर लगता था, लेकिन आज आपने कहा पक्के को देते हैं अब मैं पक्का हो जाऊंगा। उधार एक दूसरा उदाहरण देते हैं, उदाहरण ये देते हैं, भक्तों को भी कष्ट आता है, वो भगवान उनको पक्का करने के लिए देते हैं, उनको थोड़ा परीक्षा से गुजारते हैं ताकि वो पक्की हो जाएं। संसारियों को कष्ट आता है वो उनके कर्मों का होता है, भक्तों को कष्ट आता है वो भगवान के तरफ से उनको परिपक्व अवस्था में ले जाने के लिए होता है। जैसे गोपियों के बीच में से भगवान का अदृश्य हो जाना, गोपियों को कितनी पीड़ा हुई, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्रेम को पक्का करने के लिए ऐसे किया था, तुम्हें दुख देने के लिए नहीं किया था, तुम्हारे प्रेम को पक्का करने के लिए किया था। उदाहरण इसका ये देते हैं, तुम्हारे घर में चोर आएगा तो चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले करोगे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना भाई या तुम्हारा बेटा पैसा चुराएगा तो पुलिस को नहीं दोगे, तुम ही उसको दंड दोगे। ऐसे हमारे से कोई गलती हो जाती है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान ही दंडित करते हैं, वो यमराज के पास नहीं भेजते। तो ये फर्क है, दंड तो हमको भी देते हैं लेकिन उसके लिए हमारे को दंड किसी और के द्वारा नहीं देते, स्वयं ही पवित्र करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे को जो कष्ट आते हैं उनको सह लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा की सदा आशा बना के रखनी चाहिए, वो कष्ट हमारे को पवित्र करने के लिए। हाँ, किस लेवल की भक्ति के बाद भगवान इंटरफेयर करते हैं, मतलब भक्तों के जीवन में? भगवान तो जय पहले दिन मंदिर में आते हैं तब से भी इंटरफेयर करना शुरू करते हैं, कहते जाओ प्रसाद खा लो, इंटरफेयर करते हैं कि जाओ प्रसाद खा लो तो तुम पक्के हो जाओगे, नहीं खाया तो कच्चे रहोगे। भगवान अपने भक्तों से सेवा जब वो करना चाहते हैं तो उनको सेवा लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, सेवा जब तक नहीं करते हैं तब तक भगवान इंटरफेयर नहीं करते, आते हैं मंदिर में जाते हैं तब तक इंटरफेयर नहीं करते, जब सेवा करेंगे तब इंटरफेयर करेंगे, जब सेवा में लगेंगे तब भगवान कुछ न कुछ प्रेरणा देंगे, या किसी के माध्यम से देंगे या अंदर से देंगे, लेकिन सेवा करेंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि बगैर सेवा के भगवान कुछ नहीं करेंगे, सेवा के बगैर रिश्ता ही नहीं जुड़ता है, तो नहीं, जब तक रिश्ता नहीं है तब तक, जैसे बाहर रोड पे कितने लोग जा रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, आप किसी को कुछ बोलते हो, लेकिन आपके घर में आपका अपना भाई या बेटा कोई करता हो तो आप उसको डांटते हो कि नहीं? तो इंटरफियर तब करते हो जब अपना कोई रिश्ता होता है, आपने भगवान से रिश्ता बना लिया तो भगवान इंटरफियर करेगा, नहीं बनाया तो घूमते रहो। भगवान के साथ संबंध हो गया तो भगवान इंटरफियर, इंटरफियर का मतलब फिर मार्गदर्शन करेंगे अंदर से या बाहर किसी भक्त के माध्यम से कहलाएंगे, अगर हमको समझ में आए तो। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महा